तारीख 5 दिसंबर दिन शनिवार, बीबीसी इंडिया बोल। नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद से ही मधेसी आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के बीच भारत से नेपाल जाने वाले सामान की सप्लाई महीनों से बंद है। नेपाल के लोग अनाज, पेट्रोल और दवाओं के लिए तरस रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत जानबूझकर ब्लॉकेट कर रहा है, पर भारत इसका खंडन करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई नेपाल को सजा दे रहा है भारत, या फिर संकट के लिए नेपाल खुद जिम्मेदार है? आज बीबीसी इंडिया बोल में यही है इस बहस का विषय। अपनी राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। लेकिन थोड़ा सा ठहरने के बाद पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अजय शर्मा से। इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि उसके समर्थकों ने कैलिफोर्निया के सोशल सर्विस सेंटर पर हमला किया था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। मगर चरमपंथियों के एक रेडियो मैसेज में इसका कोई संकेत नहीं मिला कि गोलीकांड को अंजाम देने में आईएस का हाथ था। न ही इस बात के सबूत मिले हैं कि हमलावरों का आईएस से कोई सीधा संपर्क था। उधर अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि सैन बर्नार्डिनो के गोलीकांड में शामिल दंपत्ति को इस चरमपंथी वारदात के लिए कट्टरपंथी बनाया गया था। अपने साप्ताहिक रेडियो संदेश में ओबामा ने कहा कि सैन्य हमले वाले हथियारों का इस्तेमाल बताता है कि अमरीका में खतरनाक लोगों के लिए बंदूक हासिल करना कितना आसान है। फिलहाल जिन लोगों के विमान पर चढ़ने पर रोक है, वो किसी भी स्टोर में जाकर बंदूक खरीद सकते हैं। ये पागलपन है। अगर आप इतने खतरनाक हैं कि किसी विमान पर नहीं चढ़ सकते, तो फिर आप एक बंदूक भी नहीं खरीद सकते। इसलिए मैं कांग्रेस से अपील करता हूं कि वो इस गलती में सुधार करे। ये थे अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बारिश और बाढ़ से जूझ रहे चेन्नई हवाई अड्डे पर शनिवार से राहत कार्यों के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी व्यावसायिक उड़ानें शुरू होने में कुछ दिन और लगेंगे। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को ये जानकारी दी। उनका कहना था कि एयरपोर्ट के पूरी तरह काम करने में कम से कम 2-3 दिन लग सकते हैं। उधर चेन्नई में नगर निगम कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। बारिश और बाढ़ के कारण यहां 280 लोग मारे गए थे। बांग्लादेश के दीनाजपुर में एक हिंदू मंदिर के पास हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोग जख्मी हो गए। उस समय वहां धार्मिक उत्सव चल रहा था। माना जा रहा है कि भीड़ को निशाना बनाकर धमाका किया गया। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई गई है। इस मामले में 5 लोगों से पूछताछ हो रही है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में हो रहे सम्मेलन में शामिल देशों ने दुनिया के बढ़ते पारे से निपटने के लिए एक खाका तैयार किया है। फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने कहा कि ये सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि उनके राजनीतिक मुद्दों का समाधान अभी बाकी है। ब्लूप्रिंट के ड्राफ्ट में कई विरोधी प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। ब्रितानी टाइफून लड़ाकू विमानों ने टॉर्नेडो विमानों के साथ मिलकर सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बमबारी की। संसद से मंजूरी मिलने के बाद आईएस के खिलाफ सीरिया में ब्रिटेन का यह दूसरा हमला है। ब्रितानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टाइफून की तैनाती ने गठबंधन की क्षमता को बढ़ा दिया है। साइप्रस में ब्रितानी अड्डे पर मौजूद रक्षा मंत्री माइकल फॉलन ने कहा कि पूर्वी सीरिया में तेल क्षेत्रों पर किए गए ये हमले कामयाब रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने रक्षा मंत्रालय को मस्जिद पर हुए हमले की जांच के आदेश दिए हैं। इस हमले में 8 नागरिक मारे गए थे। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए गनी ने वारदात प्रांत में जख्मी लोगों को पूरी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने को कहा। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मैं मोहनलाल शर्मा और कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें भी खुल चुके हैं। नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1800-102-7001। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं भारत में रह रहे प्रवासी नेपालियों के संगठन अखिल भारत नेपाली एकता मंच के अध्यक्ष लक्ष्मण पंत, और टेलीफोन लाइन पर रक्षा मामलों के जानकार जनरल अशोक मेहता मौजूद हैं। विषय नेपाल संकट जो गहराता जा रहा है, वो है किस तरह से लोग वहां के पीड़ित हैं, रोज़मर्रा के सामान नहीं मिल रहे। सबसे पहले एक चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले मैं आपको कुछ आवाज़ें सुनाता हूं, जो कि आवाज़ें भारत की सीमा से सटे बीरगंज इलाके की जनता की है। इसमें वो ट्रक वाले भी शामिल हैं जो कि भारत से नेपाल सामान पहुंचाने का काम करते हैं।
मन में क्या, ये लोग अपना अपना सामान बेच कर खा रहा है, ये लोग कर्जा पैसा देकर खिलाया जा रहा है, चिवड़ा नमक खाने पे तैयार हो गया है लोग, ये लोग क्या करेगा।
दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है, हर आदमी का बच्चा का पढ़ाई का परेशानी है, हर चीज का दिक्कत है, नहीं क्या चीज का सफर, हर चीज का दिक्कत है, इतना दिन आंदोलन थोड़ी होता है।
नाम मेरा उपेंद्र यादव है। दिक्कत यह है कि जो गाड़ियाँ फाइनेंस है किस्त पे हैं, यहाँ पे दो दो महीना हो गया गाड़ी रुक गई है, यहाँ पे जैसे गाड़ी जाएगी वो गाड़ी खींचा जाएगी, फाइनेंसर गाड़ी उठा ले जाएगा, और जो हम लोग पैसा इधर लाए थे, पैसा हम लोग को मिला था, वो यहाँ बैठ करके हम लोग खा गए, ख़त्म हो गया।
ना इधर का सरकार सुन रहा ना उधर का। दिक्कत है कि हम लोग का पास का जो रुपया था ख़त्म हो गया, अभी एक टाइम खा रहे थे, एक टाइम के लिए सोच रहे। मेरा दो दो लड़का, एक ठो थी इंटर में है, एक मैट्रिक में, उसका फीस नहीं जमा हो रहा, हम यहाँ फंसे हुए हैं।
भारत सरकार हमारे कोई हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे नेपाल में हो रहा है कि ये नाकाबंदी भारत सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन नहीं, हम मधेसी अपने अधिकार के लिए नाकाबंदी किए हैं, भारत सरकार की तरफ से कोई हमारा हेल्प नहीं है, हम लोग खुद अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाए हैं। अब भारत सरकार, अब शायद सरकार से मिलकर ही कोई ऐसा वार्ता करे, लेकिन हम आंदोलनकारियों से भारत सरकार कोई सहायता नहीं।
तो ये नेपाल के बीरगंज इलाके की जनता की आवाज़ है, और निश्चित तौर पर ये वो आवाज़ें हैं जो कि पीड़ित हैं, कुछ ट्रक वालों की आवाज़ें हैं और उन लोगों की आवाज़ें हैं जिनके रोज़मर्रा के कामकाज पर फ़र्क पड़ रहा है। नेपाल इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस तरह का संकट है उसमें कई तरह के संकट हैं, तेल का संकट है, रसोई गैस का संकट है, दवाओं का संकट है और भी बहुत कुछ। किस तरह वहाँ की जनता पर असर पड़ रहा है, यही सवाल मैंने पूछा। चर्चा से पहले मैं आपको बातचीत सुनाता हूं बीबीसी संवाददाता नेपाल के संजय ढकाल से, और पूछा कि जनता को किन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है।
खास करके नेपाल में भारत से ही सभी सामान आता है, क्योंकि नेपाल तीनों डिरेक्शन में भारत के साथ सटा हुआ है और एक डिरेक्शन में चाइना के साथ सटा हुआ है, लेकिन जिस डिरेक्शन में चाइना के साथ सटा हुआ है वहाँ पे हिमालय है, मतलब ऊंची पहाड़े और हिमालय है, तो वहाँ से सामान लाना बहुत आसान नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है, इंडिया के साथ जो बॉर्डर पॉइंट है वहाँ पे मधेश का आंदोलनकारी लोग वहाँ पे धरना पे बैठे हैं और वहाँ से सामान नहीं आ पा रहा है, खास करके रक्सौल बीरगंज नाका से। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ईंधन के फ्यूल, पेट्रोलियम, डीजल और कुकिंग गैस नहीं आ रहा है, एसेंशियल मेडिसिन नहीं आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर धरना में मधेशी आंदोलनकारी नहीं बैठे हैं, उस नाके में भी इंडियन साइड से ट्रक्स को आना चाहिए था, फ्लो में कंट्रोल कर दिया गया है,
तो गैस गैस जो है
आना चाहिए था
जी। संजय, गैस जो है, गैस की कीमतें कितनी है, मतलब एक गैस का सिलेंडर कितने का मिल रहा है, दवाइयाँ कैसे मिल रही है?
गैस मिलना ही मुश्किल है, एक बात तो ये है, और काली बाजारी जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसके साथ अगर आप खरीदना चाहें तो खरीदने इतनी आसान भी नहीं है, और अगर खरीदने चाहें तो लोगों का कहना है कि 3-4 गुने ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है उन लोगों को।
तो खाना कैसे बना रहे हैं ये लोग, जो जब आपकी तमाम लोगों से बात हुई होगी, आपने उन इलाकों का दौरा किया है, किस तरह से खाना बनाते हैं?
जो शहर में है, जिसके पास पैसे है, तो वो लोग इंडक्शन हीटर, इलेक्ट्रिक से खाना बनाने में उस अल्टरनेट को घर कर रहे हैं। उसका भी एक दिक्कत है कि पावर शॉर्टेज हो रहा है साँझ और सुबह सवेरे, तो उसका भी एक मसला है, पहले से ही हो रहा है, नेपाल में पावर शॉर्टेज होता है, पावर आउटेज होता है, तो जिसके पास पैसे नहीं है वो लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
अच्छा, पेट्रोल की क्या हालत है, क्या डीजल मिल पा रहा है, अगर मिल रहा है तो क्या कीमत पे मिल रहा है?
पेट्रोलियम प्रोडक्ट कुछ भी आसानी से नहीं मिल रहा है, कहीं भी आप देखें तो लंबी लंबी कतार रहते हैं पेट्रोल पंप में, वहाँ भी नहीं मिलता है, और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर आप ब्लैक मार्केट से खरीदना चाहें तो 3-4 गुना ज्यादा पैसा आपको पे करना पड़ता है, तो यहाँ के मिडिल इनकम वाले लोग जिनको बहुत ज्यादा चाहिए होती है तो उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी।
अस्पतालों का क्या हाल है?
अस्पतालों में देखिए, 2-3 वीक पहले तो एक बड़ा सा मसला हो गया था कि एसेंशियल ड्रग्स, खास करके जो इंजेक्शन होते हैं वैक्सीन, उसका बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गया था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो कुछ एयरलिफ्ट करके लाया गया, बहुत एसेंशियल ड्रग्स हैं। तो यूनिसेफ ने पिछले सप्ताह एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि करीब 30 लाख से ज्यादा 5 वर्ष से कम उम्र की बाल बालिकाओं को, मतलब नेपाल में इस विंटर ठंड के मौसम में या तो बीमारी की या तो डेथ और डिजीज का रिस्क जोखिम बढ़ गया है, क्योंकि एसेंशियल ड्रग्स नहीं मिल रहा, ईंधन नहीं मिल रहा, उस सबसे ज्यादा इफेक्ट इन बच्चों को पड़ने वाला है, ऐसा मतलब चेतावनी यूनिसेफ ने दिया था।
सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास क्या उपाय बचा हुआ है? एक तो उसने चीन से कुछ तेल मंगाया,
चीन से कुछ मंगाया था, वो कुछ ग्रांट के तहत पे आया था, लेकिन चीन से आने के लिए अभी तो वहाँ से रास्ते ही कठिन है, तो कोई जादू से तो नहीं ला सकता ना ये सब ईंधन, मतलब फट से तो नहीं आ जाएगा, इसके लिए तो आपको अच्छे सा रास्ता चाहिए, सड़क चाहिए, जो नहीं है।
बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता संजय ढकाल बता रहे थे कि नेपाल की आम जनता किस तरह के संकट का इस्तेमाल, किस तरह का उसको मतलब संकट में फंसी हुई है। लक्ष्मण पंत जी आप मौजूद हैं, जिम्मेदार कौन है?
अब देखिए थोड़ा सा इसके लिए बैकग्राउंड में हमको जाना होगा कि जिम्मेदार कौन है। हाँ। जैसे आप स्मरण करेंगे कि 2014 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल के भ्रमण पर गए थे तो वहाँ पे उन्होंने संसद में ये बोला था कि मैं भारत की 125 करोड़ जनता का संदेश लेके आया हूँ,
गुडविल मैसेज लेके आया हूँ, नाकाबंदी था।
लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि नेपाल के हालात, मुझे लगता है मतलब जो अभाव है अत्यावश्यक वस्तुओं का जो अभाव है, उससे लगता है कि सीरिया से भी या इराक से भी या युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से भी बुरे बदतर हालात नेपाल के हैं।
जिम्मेदार कौन है सवाल?
तो ऑब्वियसली मतलब ब्लॉकेड भारत की ओर से हुआ है, नाकाबंदी भारत की ओर से हुई है, इसलिए जिम्मेदार भी भारत ही होगा। हमारे
सीधे कार्यक्रम में जनरल अशोक मेहता के पास चलते हैं। अशोक मेहता जी, आप अभी 2-3 दिन पहले ही नेपाल से लौटे हैं, आपको वहाँ की स्थिति ज़्यादा अच्छी मालूम है, जिम्मेदार कौन है? लक्ष्मण पंत जी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर हिंदुस्तान की सरकार जिम्मेदार है।
नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो नाकाबंदी है ये अंदरूनी मामला है, ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है संविधान से जुड़ा हुआ। संविधान में मलेशियों को अपना हक नहीं प्राप्त हुआ, वो हक जब उनका नहीं प्राप्त हुआ तो उन्होंने बीरगंज नेपाल के अंदर उन्होंने नाका लगाया है।
नहीं, नाका लगा दिया, लेकिन आपूर्ति तो हिंदुस्तान से होती है, तो भाई अगर आपका खाना पीना रोक दिया जाए तो ये कहाँ का न्याय है?
नहीं, ये पब्लिक परसेप्शन ये है कि भारत नहीं, अब भारत कहता है कि अगर हमारी गाड़ियां अंदर जाएंगी तो उनके ऊपर आक्रमण होगा, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो ड्राइवर्स की है और उनके ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी की जिम्मेवारी कौन देगा? तो इस वजह से ना तो ड्राइवर अंदर जाना चाहते हैं और ना भारत उसको ढकेलना चाहता है। तो मेरे लिहाज से एसेंशियली ये एक इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको उस नजरिया से देखा जा रहा है कि सब लोग नेपाल में मेजॉरिटी जो आम आदमी है वहाँ, इसको भारत का ब्लॉकेट कह रहे हैं। और जैसे आपके वक्ता कह रहे थे कि इससे बड़ा क्राइसिस है,
सीरिया और इराक से तुलना कर रहे थे।
नहीं, वो इराक और वहाँ तो वायलेंस भी है।
देखिए हमें लगता है कि ये क्राइसिस जो है मैन्युफैक्चर्ड है, मेड फ्रॉम इंडिया है ये क्राइसिस। स्पष्ट इसलिए है कि मेहता जी इसलिए है कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नेपाल में 16 ट्रांजिट पॉइंट हैं, उन ट्रांजिट पॉइंट
है 27 है।
हाँ, चलिए 27 है, चलिए आपने और करेक्ट कर दिया, 27 है। तो धरना आंदोलन स्ट्रगल जो भी है आपके दो नाके से है, एक बीरगंज है एक सुनौली है, दो मेन नाके हैं। बाकी 20 नाके की बात करें, 18 नाके की बात करें, 14 नाके की बात करें, वहाँ से तो मतलब एसेंशियल कमोडिटीज आ जा सकती हैं, उसको क्यों रोका आप लोगों ने? हमारा ये मानना है कि उसको क्यों रोका भारत सरकार ने? देखिए मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, 1950 नवंबर 10 तारीख को जब राजा त्रिभुवन, किंग त्रिभुवन दिल्ली आए थे इंडियन प्लेन में, तो उस समय एयरपोर्ट की हालत बहुत ही बदतर थी। तब इंडियन एम्बेसडर ने बोला कि ये तुरंत ठीक करवाओ, तो किंग को ले जाने के लिए मतलब एरोप्लेन जो है बिल्कुल रातारात ठीक किया गया, पूरी मतलब रातों रात उसको ठीक किया गया, प्ले मतलब ग्राउंड को, तो
ये क्यों नहीं
एयरलिफ्ट करके मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले गई या नेपाल गवर्नमेंट वहाँ पे ले गई। तो वैसे क्राइसिस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में रीरूट भी तो किया जा सकता है ट्रक्स को।
बिल्कुल बिल्कुल मेहता जी, बहुत संक्षिप्त।
गैस के जो है या पेट्रोलियम के जो है रीरूट हो सकता है। दूसरी बात मैं इसमें ये बताऊँगा, आप सड़े टमाटर भेजते हैं, आप सड़ी सब्जियां बेचते हैं, आप पेरिशेबल फूड्स बेचते हैं, लेकिन पेट्रोलियम नहीं बेचते हैं। आप पेरिशेबल फूड्स भेजने में आपको सुरक्षा मतलब की चिंता नहीं होती है, अब पेट्रोलियम भेजने में क्यों होती है?
ये जो सुनिए लक्ष्मण जी, ये जो सामान अंदर, बाकी जो एंट्री पॉइंट्स हैं, मैंने काठमांडू में और जगह पे देखा है कि गाड़ियां नॉर्मली चल रही हैं, सामान दुकानों में भरा हुआ है,
ब्लैक मार्केट के चलते हो रहा है ये सारा?
नहीं नहीं,
ये ब्लैक मार्केट में जो है अभी अभी मैंने न्यूज पढ़ा, कल न्यूज पढ़ा मैंने कि 1,00,000 रुपए देके ट्रक छुड़ाते हैं ट्रक वाले।
जी जी जी, लक्ष्मण जी बात बात सुन लेते हैं,
बात तो करने।
जी हाँ जी हाँ, चलिए जी मेहता साहब,
मुझे बात, अरे मुझे बात तो करने।
हाँ आइए प्लीज प्लीज।
ये ब्लैक मार्केट अवश्य है, लेकिन सामान आ रहा है चाहे ये, और कहाँ से आ रहा है ये दूसरे ट्रांसिट पॉइंट, तो मेडिसिन को छोड़कर सब सब सामान थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ रहा है, जिस मात्रा में आना चाहिए नहीं जा रहा। और मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि इसकी वजह से नेपाली जनता के ऊपर बहुत बहुत असर पड़ रहा है,
बहुत असर पड़ रहा है जी,
नेगेटिव अप्रोच है
जी,
और इससे भारत को बहुत अधिक एंटी इंडिया सेंटिमेंट
जी
का नुकसान हो रहा है
जी, एंटी इंडिया सेगमेंट, एंटी इंडिया वहां पर चीजें बन रही हैं, लोगों में माहौल बन रहा है। कार्यक्रम श्रोताओं का है, श्रोताओं की आवाज को भी जगह देते हैं। एक श्रोता टेलीफोन लाइन पर है, जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
हाँ सर, सबसे पहले तो हम सभी टीम को मैं नमस्कार करना चाहता हूं।
जी नमस्कार नमस्कार
नमस्कार।
मैं रविंद्र कुमार लाल बखरी केसवा गायघाट मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा
हूं। जी जी जी
जी, सबसे पहले बात आप लोगों की सुन में रहा था और कुछ ये नेपाल के जो ये बता रहे थे जो आपके संवाददाता है उनकी बात से बिल्कुल हम असहमत हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारी भारत सरकार जो है थोड़ा सा भी इसमें कहीं कुछ इंटरफेयर नहीं किए हुए है, और इसके लिए कुछ भी अगर हो रहा है तो नेपाल की सरकार स्वयं जिम्मेवार है,
नेपाल की सरकार इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार है। आप बहुत बहुत शुक्रिया। यही पर एक श्रोता को और कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं, ये तो कह रहे थे कि नेपाल की सरकार जिम्मेदार है, दूसरे श्रोता क्या कहते हैं उनकी भी जरा राय सुन लेते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
नमस्कार, जय हिंद सर।
जय हिंद नमस्कार।
मैं सुरेंद्र सर बोल रहा हूँ, भटरा घाट बीसी मधुबनी बिहार से।
जी सुरेंद्र जी।
हाँ सूरज जी सर।
सूरज
हाँ, मेरा कहना है कि एक्चुअली क्या हुआ है सर, जो जन संविधान लागू नहीं हुआ था नेपाल में, उससे पहले सीमा पर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है तब से सुरक्षा व्यवस्था जो है ना कड़ी कर दी गई है। इस संविधान समर्थित लोग यानी कि नेपाल के सरकार जो है ना ये बार बार भारत पे आलोचना लगा रहे हैं, जो भारत जो है ना नाकाबंदी कर रखा है, ठीक है, लेकिन भारत ऐसा नहीं किया हुआ है। वो जो क्या कहते हैं मधेसी लोग जो है ना वो नाकाबंदी किए हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई ऐसी नहीं है। जहाँ तक नेपाल की सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, एक मानव की भांति अगर एक चीटी भी पांव से कुछ भी जाती है ना तो धोखे से यानी गलती से कुचल भी जाती है तो मुंह से आ निकल जाता है, लेकिन यहाँ तो कितने मारे जा रहे हैं मधेसी लोग, लेकिन नेपाल सरकार कुछ भी नहीं
जी आप कह रहे हैं कि
मानवता तो आनी चाहिए।
जी मानवता आनी चाहिए। एक श्रोता को और शामिल कर लेते हैं क्योंकि चर्चा में बहुत ही गर्म चर्चा है। जी नाम बताएं, फोन यहां तक पहुंचने से पहले ही कट गया। एक और श्रोता है जी, नमस्कार, नाम बताएं कहां से बोल रहे हैं।
जी सर, मैं नवीन बोल रहा हूं, चौधरी वाली हिसार से।
अच्छा नवीन जी हिसार से, जी बताएं।
जी देखिए, हमें तो ऐसे लगता है कि जो मधेसियों की मांग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपने स्ट्रेटेजिक व्यू से ले रही है। चाहे देखिए कि जो ये मांग है मधेसियों की कि जो डिसेंट नागरिक होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल में अप लेवल पे जाने के लिए, हेलो, तो और दूसरा कि जो अब गवर्नमेंट में हाई पोजीशन पे जाएगा वो आदमी कि वहां से बर्थ नहीं, वो डिसेंट बेस पे होना चाहिए, वो बर्थ बेस पे नहीं, नेचुरलाइजेशन पे नहीं हो सकता। तो ये जो मांग है वो मधेसियों की गवर्नमेंट अपने से ले रही है कि चाइना कल को लॉन्ग वे में कि उनको चाइना को अगर मधेसी जिनका भारत के साथ बेटे रोटी का साथ है कि कल को वो अगर ये मधेसी लोग हाई पोजीशन पे गवर्नमेंट को जाते हैं तो चाइना को चेक एंड बैलेंस किया जा सके।
जी मतलब इसमें आप चाइना की
बढ़ रही जो चाइना की इंपॉर्टेंस जो बढ़ रही है नेपाल के अंदर, और भारत के लिए जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस है कि नेपाल को मना सकता है भारत।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने चीन का एंगल भी लिया। हमारे पास जो तीन श्रोता थे, तीन में से एक ने कहा, बल्कि दो ने कहा कि नेपाल सरकार ही इसके पीछे दोषी, और ये तो आपका आंतरिक मामला है।
नहीं, नेपाल सरकार तो अब नैतिक हिसाब से तो नेपाल सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए कि वो कम से कम अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करा पाने में असक्षम
है। और ट्रक अगर ये, अगर, ये, अगर ये नेपाल सरकार की जिम्मेवारी है। अशोक मेहता जी कह रहे हैं कि भाई ट्रक अगर आपके लूट लिए जाएंगे, उनको आग लगा दी जाएगी, तो कौन अपनी ट्रक ले जाएगा?
ये उनकी बात में मुझे लगता है उतनी सत्यता नहीं है, क्योंकि 10 साल नेपाल में जनयुद्ध चला, सशस्त्र मतलब युद्ध चला, उस समय भी आपूर्ति वहां पे ठप नहीं हुई, वहां तो हथियारबंद लड़ाई चल रही थी। अभी हमारे मधेशी भाई जो है वो तो हथियारबंद लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, वो तो पीसफुल है। तो ये तो एक मुझे लगता है एक बहाना है मतलब ब्लॉकेट करने का। आप देखेंगे मतलब नेपाल के जितने भी नाके हैं, मेजर जो मतलब एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को पूछेंगे कि क्यों आप ट्रक रोकते हो, तो ये बोलते हैं कि ऊपर का आदेश है,
ऊपर का
आदेश है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं।
आप आदेश की बात कर रहे हैं, आप आदेश की बात कर रहे हैं लक्ष्मण पंत जी। मेरे पास एक फेसबुक की एक टिप्पणी है, अमित कुमार चौधरी हैं, ये लिखते हैं कि नेपाल को सजा भारत नहीं बल्कि वहां की सरकार दे रही है, मधेशियों की मांग को अनसुना करके।
देखिए मधेशियों की मांग का जहां तक सवाल है, उसमें कई जेन्युइन चीजें हैं, कई उचित चीजें हैं, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। ये बात हम भी समझते हैं कि मधेशियों के साथ में मतलब सदियों से मतलब युगों से भेदभाव होता आया है, उनकी जेन्युइन मांगे जो है सुन ली जानी चाहिए, मान ली जानी चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो मधेश के संगठन जो दावा करते हैं अपने को, उन्होंने जो मांग पत्र पेश किया है, जहाँ तक हमें समझ में आता है, 4 मांगे उन्होंने रखी है।
हाँ।
एक तो नागरिकता की मांग है ना, तो उसमें ठीक है मतलब क्या कमियाँ हैं उसमें मिल बैठ के बातचीत की जा सकती है। दूसरी सीमांकन की बात है, उनका ये कहना है कि 2 प्रदेश जो मतलब तराई वाले प्रदेश हैं, तराई मधेश वाले, 2 होना चाहिए, उसमें पहाड़ी ज़िले शामिल न किए जाएं। ये लगता है नेपाल जिस भू परिवेष्टित अवस्था में है, जिस भू परिवेश में है, जियो पॉलिटिक्स में है, उसके चलते ये मांग जो है उतना व्यवहारिक मांग या उतना मतलब उपयुक्त मांग नेपाल के लिए नहीं है। नेपाल की सार्वभौम सत्ता और अखंडता के लिए ये मांग जो है फ़ायदेमंद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाई जैसे मधेश के हमारे साथी लोग जो डिमांड कर रहे हैं, कम से कम वहाँ के निवासी क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे अब मधेश के बारे में कई अफवाह यहाँ पे भारतीय संचार माध्यम में आ रही है।
हाँ।
एक तो ये चल रही है कि जैसे मधेश का पॉपुलेशन की बात है, जैसे 2011 का नेपाल का पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से ये है कि मतलब नेपाल का पॉपुलेशन जो है मधेश में, आधा पॉपुलेशन मधेश में है, मतलब आधे का मतलब ये है कि 52% की है वो, करीब 48 पॉइंट समथिंग है नेपाल का पॉपुलेशन, मतलब मधेश का पॉपुलेशन। अब मधेश उसमें एथनिक मधेशी जो है उसमें मात्र 13% है, जैसे ये बता रहे हैं कि हम 50% से ज़्यादा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर उसको बाइफर्केट करेंगे तो ये दिखाई देता है कि मधेशी पॉपुलेशन 13% है, वहाँ पे 4.4%
है,
ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मधेशियों का है, इसलिए ये इनका ये है,
ये मतलब मिल बैठ के भी सुलझाया जा सकता है,
मिल बैठ के सुलझाया जा सकता,
लेकिन वो हो नहीं रहा है,
वो हो नहीं रहा है।
अशोक मेहता जी के पास आ रहा हूँ। अशोक मेहता जी, मोहम्मद अतहर खान है, ये लिखते हैं फेसबुक पर कि भारत को नेपाल या किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि बुनियादी चीजों की सप्लाई रोक देने से इसका सीधा असर आम आदमी पे पड़ता है, इससे नेपाल सरकार के साथ साथ आम आदमी के दिल में भी भारत के खिलाफ नफरत पैदा होगी और भारत को किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अशोक मेहता जी
बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ये, लेकिन इसकी वजह भी उनको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और वहां से पॉलिटिकल प्रॉब्लम अपनी मधेशी जो है वहां नेपाल के, वो अपने हक जो लक्ष्मण पंत बात कर रहे थे, 3 खास जो अमेंडमेंट्स करवाना चाहते हैं वो संविधान की, अब वो अभी तक आज 112 दिन हो गए हैं आंदोलन को, 70 दिन नाकाबंदी के, और इसमें 52 लोग मर चुके हैं, वो शहीद हो गए हैं आंदोलन में, तो अहिंसा अवश्य हुई है। ये कहना लक्ष्मण पंत का कि ये पीसफुल है, ये पीसफुल नहीं है, हमने देखा है कि बीरगंज पर भी ये नेपाल पुलिस ने फायरिंग की है, ये लोग 52 लोग जो मरे हैं जिसमें नेपाली पुलिस भी शामिल है, लेकिन हिंसा हो रही है, और जब तक ये मांगे इनकी पूरी नहीं होंगी, मुझे लगता नहीं है कि मधेशी जनता जो अभी बीरगंज में है, नेपालगंज में भी उनका नाका लग गया है, और अगर भारत ने सामान सामग्री को रीरूट करने की कोशिश की तो मधेशी कह रहे हैं कि हम वहाँ भी ब्लॉक लगाएंगे
जी,
जो एक एक जब चाइना ने 12 ट्रक भेजे तो मधेशी ने क्या किया, मधेशी ने कहा चाइना बैक ऑफ, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनका जो जो पॉलिटिकल डिमांड है
वो पूरी हो,
जो वो अगर वो अमेंडमेंट जो अभी संविधान
मतलब अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम में कुछ श्रोताओं को शामिल कर लेता हूं, समय थोड़ा कम है जी। नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
हेलो
जी, हाँ नाम बताइए।
हाँ जनाब आदाब, मैं दिलावर हुसैन कादरी बोल रहा हूँ, जैसलमेर राजस्थान
जी। दिलावर साहब अपनी राय रखें आप।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नेपाल में एक बोरान आया, संकट आया है, इसके लिए नेपाल तो जिम्मेदार है ही, नेपाल के लिए बदनसीबी है ही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारत भी जिम्मेदार है।
किस तरह से?
सिर्फ अभी जो यहाँ पर जो बीजेपी हुकूमत है, तो बीजेपी हुकूमत खुलकर तो नहीं कह सकती, लेकिन जो नेपाल अभी उन्होंने धर्म निरपेक्ष राष्ट्र उन्होंने घोषित किया है, वो इनके गले नहीं उतरा, और इसका सबूत योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था, और बीजेपी का जो मात्र संगठन विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंगल थे, उन्होंने भी चतरा कुंभ के दौरान कहा था कि हम नेपाल को वापस हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, उसके लिए हम आंदोलन तेज करेंगे।
मतलब आपका ये कहना है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक श्रोता को और शामिल कर लेते हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
जी सर, मैं गोविंद प्रसाद बोल रहा हूँ, कुशीनगर जिले से।
जी गोविंद प्रसाद जी, अपनी राय रखें आप।
सर पहली बात ये है कि कहते हैं लोग जो झुकते नहीं वो टूटते हैं। पहले नेपाल को भारत पे ब्लेम लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम टूट क्यों रहे हैं, आखिर कमियां कहाँ है कि हम ऐसे टूट रहे हैं। दूसरी बात, हम तो बुद्ध और महावीर के देश में रहते हैं ना, हमारे यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, मानवता क्या होता है, ठीक है नेपाल क्या कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन हमारी मानवता क्या कहती है। अगर नेपाल में कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत संकट आने वाला है, लोग मरने वाले, तो हमारी मानवता क्या कहती है,
हमारी मानवता क्या कहती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी टिप्पणी ले रहा हूँ लक्ष्मण पंत जी, आपकी भी और अशोक मेहता जी की भी, इन्होंने मानवता की बात की। मेहुल कुमार हैं, इनकी जो टिप्पणी है ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल में इतने दिनों से संकट बना हुआ है और अगर इसका शीघ्र समाधान नहीं निकला तो इन्हें डर है कि कहीं भारत नेपाल बॉर्डर भारत पाकिस्तान की तरह ना हो जाए। अशोक मेहता जी आपकी टिप्पणी पहले लूंगा संक्षेप में, और उसके बाद लक्ष्मण पंत जी।
मैं पहली बात तो कहूंगा कि जो मेडिसिन है, जो हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन है, उनको अवश्य अंदर
तेल
के का
तेल रसोई लोग चूल्हा जला रहे हैं।
और दूसरी बात ये है कि कल यहाँ काठमांडू में एक फैसला हुआ राजनीतिक तीन पार्टी के बीच में कि 3 महीने के अंदर ये इसका समाधान निकालेंगे। 3 महीना
मतलब उन्होंने एक डेडलाइन अपने लिए दी है कि 3 महीने में समाधान निकालेंगे।
तो वो 3 महीने के लिए ये मधेशी का जो मधेशी पार्टी है उनका कोई ट्रस्ट नहीं है काठमांडू के साथ।
जी जी जी।
और क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, ये 3 महीने इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए इसको 3 दिन या मैक्सिमम इस साल के खत्म होने के पहले, इस 31 दिसंबर के पहले ये समस्या हल होनी चाहिए
जी। 31 दिसंबर कह रहे हैं कि इससे पहले हल होनी चाहिए। आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में लक्ष्मण पंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक मेहता जी आखिरी टिप्पणी लक्ष्मण पंत जी।
हम दिल्ली के मित्रों से और दिल्ली के शासन में बैठे हुए मित्रों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द नाकाबंदी बहाल करें, हटे, संबंधों को नॉर्मलाइज करें और नेपाल को एक अलग स्वतंत्र और सार्वभौम देश की तरह देखना शुरू करें, तब जाके मुझे लगता है समस्या का समाधान होगा। अदरवाइज फिर इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी।
मतलब बातचीत के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान होना चाहिए।
नेपाल को अलग सार्वभौम राष्ट्र के रूप में,
बहुत 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 शुक्रिया लक्ष्मण पंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मेहता जी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि उसके समर्थकों ने कैलिफोर्निया के सोशल सर्विस सेंटर पर हमला किया था जिसमें 14 लोग मारे गए थे, मगर इसके सबूत नहीं मिले हैं। उधर अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कांग्रेस से अपील की है कि वो बंदूकों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए। बारिश और बाढ़ से जूझ रहे चेन्नई हवाई अड्डे पर शनिवार से राहत कार्यों के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश के दीनाजपुर में एक हिंदू मंदिर के पास हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोग जख्मी हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में हो रहे सम्मेलन में शामिल देशों ने दुनिया के बढ़ते पारे से निपटने के लिए एक खाका तैयार किया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा बीबीसी इंडिया बोल में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में यानी कि घटना चक्र में हम आपसे फिर मिलेंगे। मोहनलाल शर्मा को अजीत सारथी के साथ विदा दें। नमस्कार।